الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين آج هم ان شاء الله تعالى سورة النور آيات نمبر 55 سے 64 تک کریں گے اور اس سورة کو مکمل کریں گے ان شاء الله بہت ہی جامع سورة ہے یہ بہت سارے ارٹیکلز اس میں ہمیں پتہ چلے ہم نے دیکھا اس سے پہلے اس صورت کے اندر ہمیں بتایا گیا معاشرتی زندگی کے سوشل لائف کے جو احکامات ہیں وہ ہمیں دیے گئے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح سے بے حیائی فحاشی کو معاشرے سے ختم کیا جائے اس کے لیے کیا سٹیپس اٹھائے جائیں جو اس کام کے لیے معاون ہوں گے ہم نے پھر اس کے بعد آیت نور دیکھی 35 آیت جو ہے 35 آیت سے پہلے ہم دیکھیں یہ سارے سوشل لائف سے متعلق احکامات ہیں اب یہ 35 سے 57 تک نا بالکل ڈفرینٹ احکامات ہیں کیونکہ پہلے یہ آیت نور آئی جس سے اس سورت کا نام سورت نور ہے اور اس میں ایک ایسی مثال دی گئی جو ہدایت کے نور کی مثال ہے کہ ہدایت کیا ہوتی ہے کیسے دل میں ہوتی ہے اور پھر اس نور کی حفاظت کے لیے احکامات دیے گئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس نور کی حفاظت ہو سکے جس میں پہلا حکم تسبیح کا پھر ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بھی پڑھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی انکنڈیشنل اوبیڈینس کنڈیشنل نہیں کہ یہ ہوگا تو پھر میں مانوں گی یہ سمجھ آئے گی تو میں مانوں گی یہ لاجک ہوگی وہ تو کنڈیشنل اوبیڈینس ہو گئی نا غیر مشروط اطاعت غیر مشروط کوئی شرط نہیں رکھنی آپ نے بس سمے نہ ہوا تو آنا ٹھیک ہے اور پھر نمبر 3 پہ ہے کہ اجتماعی نظام کا ایسا اہتمام کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں جس کی رہنمائی کی تو یہ سب چیزیں ہم آیت نمبر 57 تک دیکھنے والے ہیں اس کے بعد پھر سے دوبارہ معاشرتی احکامات دیے جائیں گے اور وہ ہم دیکھیں گے پھر سورت کا اختتام ہے تو یہ جو آج ہم ابھی 57 تک پڑھیں گے یہ پیچھے کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے صالح عمل کی یہ دو جس نے چیزیں پوری کی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ فرمایا وہ کیا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور خلافت دے گا زمین میں کم استخلف الذین من قبلہم جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا جانشین بنائے ان سے پہلے کچھ لوگوں کو اچھا اب یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدے کیے ہیں ایمان والے اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اور یہ آیت کہا جاتا ہے کہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب مسلمان جو تھے نا بہت ہی یعنی ایک مشکل حالات تھے مدینہ میں ایک ایسے حالات تھے جو بڑے تنگ دستی کے تھے خوف کے تھے اور سودی کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ جب حدیبیہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا تو اللہ عز و جل نے ان سے وعدہ فرمایا کہ وہ ان کو ضرور غلبہ عطا فرمائے گا یہ اللہ تعالیٰ زمین میں آپ کو خلافت دے گا جیسے پہلے لوگوں کو خلافت دی پہلے کس کو خلافت دی جیسے بنی اسرائیل کو دی تھی فرعون کو غرق کر کے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے گا یہ دن پھر جائیں گے یہ دن ایسے نہیں رہیں گے مگر شرط کیا ہے कि मुसलमान ईमान को मजबूत करें और साले अमल करें। मुकातिल बयान करते हैं कि बाज मुसलमानों ने कहा कि अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में कब फतह अता फरमाएगा, हमें कब जमीन में अमन नसीब होगा, हमसे कब मुसीबतें दूर होंगी। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। तो इस आयत के मुखातिब जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब है कि अल्लाह ताला जरूर आपको खिलाफत देगा। तो आप देख लें ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने के बाद 10 साल तक आप खुद और आपके सहाबा खौफ की हालत में रहे, कभी छुप कर कभी जाहिर अल्लाह ताला की इबादत करते थे। फिर आपको मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया गया, तो वहां भी मुसलमान अमल में तो नहीं थे, खौफ में ही रहते थे, हथियारों के पहरे में सुबह शाम गुजारते थे। क्योंकि अब ये होता था कि अभी हमला हुआ अभी हमला हुआ, कभी अंदर वालों से भी डर होता था, ये मुनाफिकीन भी कम नहीं थे, वो भी ऐसी शरारतें करते रहते थे, इसी तरह बाहर के दुश्मन का खौफ रहता था। फिर आपके असहाब में से एक शख्स ने कहा, यार सुल्लल्ला हम पर अमन और सलामती का दिन कब आएगा जब हम अपने हथियार रख सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़े अरसे के बाद ही तुम में से कोई शख्स अपनी जमात में बगैर हथियारों के पैर फैलाकर बैठ सकेगा। इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जजीरा अरब पर गलबा अता फरमाया, मुसलमानों ने अपने हथियार भी उतारे, अमन चैन से भी रहने लगे। फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपने पास बुला लिया। तो इसके बाद भी मुसलमान जो थे फिर आगे से आगे बढ़ते ही गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर, उस्मान, इनके दौर तक अमन से ही रहे, हत्ता कि फिर फितने शुरू हो गए। जब मुसलमानों ने अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करनी शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में फिर से दुश्मन का खौफ डाल दिया, उन्होंने फिर आपस में लड़ना शुरू कर दिया। तो उबई बिन काब बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मदीना में आए और अंसार ने उनको जगह दी और अरब उन पर तीर मारते थे और वो कोई रात हथियारों के बगैर नहीं गुजारते थे। इन्हें कितना सोचे खौफ हो, हर सुबह हथियारों के साथ करते थे। तो उन्होंने कहा, हम कोई रात अमन और चैन से गुजार भी सकेंगे जिसमें हमें किसी का डर ना हो सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। तो अब आप सोच सकते हैं कि किन हालात में ये आयत उतरी। फिर तंगदस्ती भी थी, खौफ भी था, हर तरह के मसाइब थे उनके ऊपर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे से अल्लाह वादा करता है कि अल्लाह ताला तुम्हें खिलाफत भी देगा। नंबर 2 एक और वादा है, बोले मक्कीन, और अल्लाह ताला जरूर साबित कर देगा उनके लिए उनके दीन को जो उसने पसंद किया उनके लिए। अल्लाह ताला ने कौन सा दीन पसंद किया? इस्लाम। इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो दीन पसंदीदा ना वो इस्लाम है। तो यानी जमीन का इख्तदार भी देगा और वो वक्त भी आएगा जब दीन जम जाएगा, अल्लाह ताला इस्लाम को इस्टेब्लिश कर देगा जमीन पर। अभी तक तो खतरों में घिरा हुआ था ना इस्लाम और मुसलमान। तो इस आयत में बहुत बड़ी खुशखबरी है मुसलमानों के लिए, ये मसले हल हो जाएंगे, हमेशा नहीं ऐसे रहेगा। और वाकई इंसान पे जब मसाइल और मुश्किलात आती हैं तो वो दिन उसके लिए काटने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आप देखिए हमेशा अमन के जो खुशहाली के दिन होते हैं वो जल्दी भी कट जाते हैं और बड़े आसान भी होते हैं, और जो मुसीबतों के दिन होते हैं वो इंसान पे बड़े ही मुश्किल होते हैं, बहुत भारी होते हैं और ऐसे लगता है कि कट ही नहीं रहे। ऐसे वक्त में मुसलमानों को इतनी बड़ी खुशखबरी दी गई। और तीसरा एक और वादा दिया गया, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, कि अलबत्ता जरूर बदल देगा उनको खौफ के बाद अमन की हालत में। अल्लाह ताला ये खौफ दूर कर देगा। कितना खौफ था ना मुसलमानों को, कभी कहीं से काफरों की साजिशों का पता चल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जासूस भेज रहे हैं, पता चल रहा है वो वहां से आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनकी ये साजिश है, ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में आप अंदाजा कीजिए कि ऐसी आयत जिसके अंदर इतनी बड़ी खुशखबरी दी जाए जो ईमान वाला है वही इस पे यकीन कर सकता है, क्योंकि बाजाहिर तो ऐसे कोई हालात नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि मुनाफिकीन तो बड़ा हंसते थे इस बात के ऊपर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे आजाब के मौके पर, आपको पता है, जब खंदक खोदने का हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खुशखबरियां दी, वो बहुत ही मुश्किल टाइम था, बहुत ज्यादा मुश्किल। कोई समझ लें आप ऐसे कि सारा अरब मिलके मुसलमानों के ऊपर हमले के लिए आने वाला था, और मदीना की बस्ती छोटी सी बस्ती थी, कोई ऐसी बड़ी तो नहीं थी, और कोई मैच नहीं थे ये उनके मुकाबले में। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम और फारस की फतूहात की खुशखबरी दी तो मुनाफिक तो हंसने लगे, उनको तो एक मौका मिल गया कि ये आज भूख में इतने हैं कि पेटों पे पत्थर बांधे हुए, खाने को इनके पास नहीं, खौफ का ये आलम है, और रोम और फारस को फतह करने चले। लेकिन अल्लाह ताला ने ये वादा पूरा करके दिखाया, और वाकई उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील तक हुकूमत गई थी मुसलमानों की, और मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 60 लाख मुरब्बा मील तक गई थी, यानी खिलाफत कई बर्रे आजमों तक, कई कॉन्टिनेंट्स तक फैल गई थी, सिर्फ अरब में नहीं थी। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने इस्टेब्लिश कर दिया इस दीन को। आप देखें कि एक वो भी वक्त था कि आदी बिन हातिम बयान फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आपके पास एक शख्स ने आकर फाके की शिकायत की, फिर एक और शख्स आया, उसने रास्ते में डाकुओं की शिकायत की। आपने फरमाया, आदि क्या तुमने हीरा को देखा? हीरा कूफा से 3 मील दूर एक शहर है, आज उसका नाम नजफ है, ठीक है? तो फरमाया कि तुमने हीरा को देखा है? तो मैंने कहा मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना है। आपने फरमाया, अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई तो तुम एक औरत को देखोगे जो सफर करने वाली होगी, कि वो हीरा से सफर करके आएगी और काबा का तवाफ करेगी, और उसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं होगा। मैंने दिल में कहा, फिर कबीला तय कि उन डाकुओं को क्या होगा जिन्होंने हर जगह फसाद बर्पा किया, यानी ऐसी औरत क्या, हाँ ये तो मर्दों को नहीं छोड़ते, काफलों को लूट लेते। और फरमाया, अगर तुम्हारी जिंदगी लंबी हुई तो तुम किसरा के खजानों को फतह करोगे। मैंने पूछा, किसरा बिन हुरमस? फरमाया, हाँ, अगर तुम्हारी जिंदगी लंबी हुई तो तुम मुट्ठी भर सोना या चांदी लेकर इस तलाश में निकलोगे कि कोई इसको कबूल कर ले, और तुमको कबूल करने वाला कोई बंदा नहीं मिलेगा। यानी अब इंसान अपना सदका लेकर, मुट्ठी भर सोना या चांदी सदका देने के लिए निकलेगा, और कोई लेने वाला नहीं होगा, और तुम में से कोई शख्स जरूर अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या मैंने तुम्हारी तरफ कोई रसूल नहीं भेजा था जिसने तुमको तबलीग की थी? वो शख्स कहेगा, क्यों नहीं? फिर फरमाएगा, क्या मैंने तुमको माल नहीं दिया था और तुमको फजीलत नहीं दी थी? वो कहेगा, क्यों नहीं? फिर वो अपनी दाएं जानिब देखेगा, अल्लाह हू अकबर, तो उसको सिर्फ जहन्नुम नजर आएगी। फिर वो अपनी बाएं जानिब देखेगा तो उसको सिर्फ जहन्नुम नजर आई। आदि कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जहन्नुम की आग से फिर बचो, चाहे तुम खजूर का एक टुकड़ा सदका कर सको तो वो दे दो, जिसको एक खजूर का टुकड़ा भी ना मिले तो वो किसी से अच्छी बात ही कह दे और इस तरह से ही जहन्नुम से बच जाए। फिर आदि कहते हैं, मैंने देखा कि एक औरत को कि जो हीरा से सफर करके आई और उसने काबा का तवाफ किया और रास्ते में सिर्फ अल्लाह से डरती थी, यानी ये वाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोई दी थी वो आदि फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी में पूरी हो गई, और मैं उन मुसलमानों में से था जिन्होंने किसरा के खजानों को फतह किया था। और अगर तुम्हारी जिंदगी तवील हुई तो तुम जरूर देखोगे कि तुम मिट्टी पर सोना लेकर निकलोगे और उसको कोई कबूल करने वाला होगा, कबूल करने वाला नहीं होगा, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो इस तरह होगा। अल्लाह हू अकबर। तो लेकिन शर्त इसमें क्या है? ईमान और साले अमल करने वाले। और क्या ये सहाबा कराम के लिए खुशखबरी थी या आइंदा आने वाले जमानों के लिए भी ये खुशखबरी है? ये गलबा है, ये दीन का एस्टेब्लिश होना है, ये खौफ से का आ, आ, बदल जाना अमन से, ये क्या आइंदा के जमानों के लिए भी है? जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से हमें ये बात पता चलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अल्लाह ताला ने जमीन को लपेट कर दिखा दिया, फिर मैंने जमीन के मशरिक और मगरिब को देखा और मेरी उम्मत का इकतदार वहां तक पहुंचेगा जहां तक मुझे जमीन दिखाई गई। इकतदार में खिलाफत भी आ जाती है, मलुकियत भी आ जाती है, जो भी मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को वहां तक हुकूमत मिलेगी। एक दूसरी हदीस भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जमीन पर कोई पत्थरों का या मिट्टी का मकान बाकी नहीं बचेगा और ना कोई खैमा बाकी रहेगा मगर अल्लाह ताला इसमें कलमा कलमा इस्लाम को दाखिल कर देगा। किसी गालिब को गलबा देकर या किसी जलील को पस्त करके, जो गालिब होंगे उनको अहले इस्लाम से कर देगा और जो कमजोर होंगे उनको मुसलमानों के ताबे कर देगा। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने इस उम्मत को जमीन में खलीफा बनाने का वादा किया है, बशर्ते के, ऐसे नहीं कि हम कहें हम तो मुसलमान हैं हमें क्यों नहीं गलबा मिल रहा। देखें यहाँ पे शर्त क्या है, वादा किससे है, ये तीन वादे किससे किए गए, उनसे नहीं जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, उनसे हैं जो ईमान लाके और साले अमल कर। ईमान और इस्लाम में फर्क है, ठीक है। तो सिर्फ एक कलमा पढ़ देना आपको वो मोमिन नहीं बना देता। ये गलबा अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता किया और आइंदा भी करेगा अगर मुसलमान इस चीज को पूरा कर ले। और ये जो है, क्या ये टारगेट है कि हमें गलबा मिल जाए, खिलाफत मिल जाए, या ये नतीजा है, रिजल्ट है? तो बाज लोगों ने समझा कि ये हमारा टारगेट है कि दीन को हम इस्टेब्लिश करके दिखाएं, हम खिलाफत कायम करके दिखाएं जमीन पर ही। ये इसको जब उन्होंने टारगेट बनाया ना, गोल बनाया, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जब ये टारगेट बन गया तो बाय हुक और बाय क्रुक ये हमें लेना ही लेना है, जिस तरह से भी, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़े तो टेढ़ी भी करेंगे। फिर वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने लगे और यहां तक कह दिया कि कोई चीज ही आपकी कबूल नहीं, ना आपकी नमाज का निजाम, ना आपकी जकात का, ना आपका कोई भी अमल कबूल नहीं जब तक आप इकतदार हासिल ना कर लें। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें अगर यही टारगेट होता तो अंबिया में से तो ज्यादातर कोई इकतदार भी नहीं हासिल कर सके। आप देख लें अंबिया को, उनमें से मूसा अलैहि सलाम को इकतदार मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि सलाम को इकतदार मिला, दाऊद अलैहि सलाम, सुलेमान अलैहि सलाम को मिला, और बाकी कोई ऐसे अंबिया को इकतदार नहीं मिला। तो फिर उन्होंने क्या अपना काम नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं, इसलिए कि इकतदार मिले तो कामयाबी है, इकतदार ना मिले तो कामयाबी नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, आपको ये कहा गया अपने ईमान को मजबूत करो और अपना किरदार बिल्ड करो, अपना कैरेक्टर बिल्डिंग पे तवज्जो। बाकी अल्लाह ताला का वादा है कि वो आपको इकतदार देगा, वो आपको जमीन में इस्टेब्लिश करेगा, इस दीन को करेगा जमीन पे इस्टेब्लिश, अमन लेकर आएगा अल्लाह ताला, ये अल्लाह का वादा है। लेकिन हमारी तवज्जो इसके ऊपर नहीं होती कि अपने ईमान को मजबूत करें और साले अमल करें, हमारी ये तवज्जो ज्यादा इकतदार को हासिल करने की कोशिश में होती है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया याबुदूनानी ला युश्रिकूना बी शैआ, वो इबादत करें मेरी और मेरे साथ किसी को भी शरीक ना ठहराएं, यानी वो ऐसे लोग हों इनके साथ अल्लाह ताला का वादा है कि वो इबादत करने वाले हों मेरी और किसी के साथ, किसी को भी मेरे साथ शरीक ना ठहराएं। अब आप देख लें कि मुसलमान कंट्रीज होते हुए जहां पे, जिन कंट्रीज को लिया ही गया इस्लाम के नाम पे, जिस मुल्क को इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, आप अंदाजा कीजिए कि वहां पर ही कितना शिर्क हो रहा है, कहीं और को तो छोड़ दें, कैसे कैसे शिर्क के अड्डे बने हुए मुसलमान मुल्कों में, और शिर्क करके भी मुसलमान सोचते हैं कि हम सबसे बड़े तौहीद के पैगंबर। लोग सजदे कर रहे हैं कब्रों को, नमाजें पढ़ रहे हैं कब्रों पर, दुआएं मांग रहे हैं कब्रों से, नजरों नियाज दे रहे हैं कब्रों पर। बाज कहते हैं अच्छा नहीं, सजदा करना गलत है, लेकिन बाकी आप बेशक दुआएं कर लें, नजरों नियाज दे लें यहाँ पे। हालांकि हदीस में आता है कि एक मक्खी चढ़ाने पर, एक बुत के ऊपर एक मक्खी चढ़ाई थी एक आदमी ने, और उस पे वो जहन्नम में चला गया। तो वो एक मुसाफिर था, वो किसी बस्ती से गुजरा था। उन लोगों ने, बस्ती वालों ने कहा हमारे बुत के ऊपर जब तक कोई चीज ना चढ़ाई जाए हम नहीं यहाँ से तुम्हें गुजरने देंगे, जिंदा सलामत ना। तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा चाहे एक मक्खी मार के ही हमारे खुदा के ऊपर चढ़ावा चढ़ाओ, लेकिन तुम्हें चढ़ाना होगा। उसने कहा ठीक है, मक्खी तो मामूली चीज है। उसने मक्खी लेके तो उसके ऊपर चढ़ा दी और जहन्नमी हो गया। हदीस में आता है। और यहाँ पर देगे देते हैं, यहाँ पर और मन्नतें मांगते हैं, धागे बांधते हैं, और क्या क्या नहीं कुछ करते, दुआएं मांगते हैं, और फिर कहते हैं ये बच्चा हमें इस फला पीर ने दिया है, साफ कहते हैं। बाकायदा सजदे करते हैं, कब्रों को दूध से और अरके गुलाब से धोते हैं, इन बुजुर्गों की ही कुर्बत हासिल करने के लिए ना, इन बुजुर्गों के ही नूरे नजर बनने के लिए ना। क्योंकि ये अकीदा रखते हैं कि ये बुजुर्ग राजी हो जाएं तो ये हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे, यही हमें बचाने वाले हैं, यही हमारा बेड़ा पार कराने वाले हैं, यही हमें वहां पे इनका दामन पकड़ लेंगे तो हम वहां पे भी पार हो जाएंगे, ये अकीदे हैं। आप देख लें आज अल्लाह ताला माफ फरमाए कि आधे से ज्यादा मुसलमान तो वैसे ही अपने दीन को जानते ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दीन को भुला बैठे हैं। और जो कोई थोड़ा बहुत दीन पे चलने वाले हैं उनमें भी आधे से ज्यादा तो शिरकी करने वाले हैं। तो कहाँ जाके हम खड़े होते हैं, कहाँ से हमें ये इख्तदार मिले, और कहाँ से हमारा दीन एस्टेब्लिश हो, और कहाँ से हमें अमन हासिल हो। आज दुनिया में देखें खौफ ही खौफ है मुसलमानों को, इस्लामोफोबिया की वजह से कितना खौफ होता है। कई जगहों पर मुसलमान अपने दीन को सही प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते इसी की वजह से। आज आप देख लें कितनी जगहों पर, आप लोग खुद जानते हैं कितनी जगहों पर मुसलमानों को सताया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान है, उनका कलमा पढ़ने की वजह से। अब ये एक खौफ कैसे दूर होगा, अमन कैसे होगा? क्या कभी हमें इस जमीन के ऊपर कोई खिलाफत हासिल हो सकती है? क्या ये दीन कभी इस्टेब्लिश होगा इस जमीन पे? हाँ, जबकि आप ईमान और साले अमल इसके रास्ते पर चल पड़े, अपने ईमान को मजबूत करने की फिक्र करें और अपने आमाल को सही करें, अपने किरदार को सही करें, अपनी इसलाह में लग जाएं। जब आप इसलाह के प्रोसेस में चल पड़े, इस रास्ते पर चल पड़े, तो अल्लाह ताला का वादा है फिर परफेक्शन आपसे दरकार नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि आप परफेक्ट हो जाए, रसूलों नबियों के बराबर होके दिखाएंगे, तो फिर गलतियां इंसानों से ही होती, मगर कम से कम इस्लाह का प्रोसेस तो शुरू करें। अगर ये नहीं करते तो आपके साथ ये वादा नहीं है, फिर एक्सपेक्ट मत करें, फिर मत रोएं कि हाय क्यों मुसलमानों के साथ ये दुनिया में हो रहा है, मुसलमानों के साथ ही क्यों होता है। फिर खौफ भी रहेगा, फिर आपको हुकूमतें भी हासिल नहीं होंगी। आज जहां पे मुसलमानों को इकतदार हासिल है, वो भी देख लें किस किस्म का, गुलामी वाला। कहीं वो IMF के गुलाम है, कहीं दूसरे मुल्कों के गुलाम है, कर्जों में जकड़े पड़े हैं, ये तो गुलामी है, ये क्या इकतदार है? और दीन आपका कहीं एस्टेब्लिश नहीं हुआ वहां, तो बताएं ऐसी जिल्लत की हालत में मुसलमान इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है। जिधर देखो मुसलमान जलील हो रहा है। आप सोचते नहीं इसकी वजह क्या है, वादा किनके साथ है? फिर आप रो रो के कहते हैं अल्लाह हम तो तेरा कलमा पढ़ने वाले हैं, फिर हमारे साथ क्यों ऐसा? काफिर तो ये इतने दन दनाते फिर रहे हैं, और काफिर भी आपको ताने देते हैं कि तुम्हारा दीन अगर इतना ही सच्चा होता तो फिर तुम क्यों नहीं दुनिया में इज्जतें पाते, गलबा पाते, और फिर आप भी शकुक व शुबहात का शिकार हो जाते। कि वाकई कई लोग इसी वजह से भटक जाते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं वाकई अगर हम सच्चे होते, हमारा दीन सही होता तो हम क्यों ऐसे होते। लेकिन वो ये नहीं कुरान में पढ़ते कि अल्लाह का वादा किन लोगों के साथ है। क्या वो नहीं समझते इस बात को कि वादा हर एक कलमा गो के साथ नहीं है, कि कलमा पढ़ा हुआ है बाकी जिंदगी देखें तो कहीं दूर दूर से अगर एक ईमान वाले की जिंदगी दिखाई नहीं देती। ये सच बात है, हमारी जिंदगियों में जैसे शिर्क भी दाखिल हो चुका, तौहीद नाम को नहीं, ईमान तो कहाँ, और अमले साले तो साफ ही मुंह से कह देते अमल हमसे नहीं होता, बस मुंह से कहलवा लो बातें करा लो, अमल हमसे नहीं होता भाई, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये तो मुनाफिकीन करते थे, उनकी जुबानें ऐसी होती थी कि अल्लाह रसूल का नाम होता था मगर अमल के बाद भाग जाते थे, हम पढ़ चुके, अपनी मर्जियां चाहते थे, अल्लाह रसूल के फैसले उनको कबूल नहीं थे। तो अब आप देख लें कि ये तो उनका किरदार था, तो हमें तो ये कुछ और कहा गया, हम तो किसी और ही रास्ते पर चले हैं। और सोचते हम क्या है कि हमें तो बस इक्तदार भी मिलना चाहिए, हमें तो बस ऐसा हो हमारे साथ होना चाहिए क्योंकि हमने कलमा पढ़ लिया, बस बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो ये जहन से निकाल दीजिए, रियलिटी में आए, और कोई आपसे पूछे भी तो उसको बताएं कि हाँ ये हमें नहीं मिल रहा, हम दुनिया में इसीलिए जलील हो रहे हैं क्योंकि हम अल्लाह के दीन पे चलने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ कलमा पढ़ के समझ रहे हैं कि हम ईमान वाले हो गए, ऐसा नहीं है। जिस दिन हम खड़े हो गए और वाकई सही दीन पे चलने लगे और वाकई वो वाली जिंदगी अपनाई जैसी कि हमसे दरकार है, जैसे एक ईमान वाले की जिंदगी होनी चाहिए, अमल करके दिखाया, तो उस दिन फिर कोई भी हमें हरा नहीं सकेगा, सारी दुनिया फिर हमारे पीछे होगी, हम दुनिया के पीछे नहीं होंगे। तो इससे जहन को आपके आज के बाद क्लियर हो जाना चाहिए कि जिल्लत क्यों है, पस्ती क्यों है, जवाल क्यों है, हकूमत क्यों नहीं हमारे पास, खौफ क्यों है, हर जगह मार क्यों खा रहे हैं, ये वजह है। वमन कफर बाद ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल फ़ासिकून, और जो कुफर करे इसके बाद, किसके बाद, यानी इस बात को जानने के बाद भी, कुफर से मुराद यहाँ पे क्या है, ईमान और साले अमल फिर भी ना करे, इनकार करे इससे, तो फिर ऐसे लोग ही फासिक हैं, फासिक हदें फलांगे वे, हदों से निकले वे नहीं, जब इनको पता चल भी गया कि ये है जो नुस्खा है, उसके बाद भी इनकार करें, उनको पता है कि अल्लाह ताला हमसे ये डिमांड करता है, ये रिक्वायरमेंट है, फिर भी वो ये बात ना माने, तो फिर ये लोग फासिक हैं। तो फासिकों के साथ क्या वादा है, फासिकों के साथ क्या वादा है ये इस चीज का कि उनको जमीन पे अल्लाह ताला इक्तदार देगा, खौफ को बदल देगा, अमन से दीन को उनके कायम कर देगा जमीन पे, क्या ये फासिकों से वादा है कहीं कुरान में? तो फिर हम जब फासिकों वाली जिंदगी इख्तियार किए हुए, तो उसके बाद फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इसके बरक्स देखें कि इस्लाम जो एक शख्स से शुरू हुआ मक्का में, सारी दुनिया मुखालिफ थी, कैसे चंद सालों में विद इन हाफ अ सेंचुरी कहाँ तक पहुंच गया, कहाँ तक, 50 साल में कहाँ तक पहुंच गया, कॉन्टिनेंट्स तक, और हमारे मुल्कों को बने हुए सेंचुरी होने वाली, लेकिन क्या हाल है, बद से बदतर ही होता जा रहा, और कोई अपने किरदार को संवारने की फिक्र नहीं, अपने ईमान की फिक्र नहीं, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं, बस चीना झपटी चीना झपटी। हम सोचते हैं इक्तदार छीनने से मिल जाएगा, अल्लाह का वादा है ईमान लाओगे और साले अमल करोगे तो मिलेगा। अल्लाह अकबर। वाकीमु सलात व आतु ज़कात व अतीउ रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और कायम करो नमाज और दो जकात और इताअत करो रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए, यानी अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला रहम कर दे तुम्हारे ऊपर, अब ये जिल्लत और पस्ती से तुम निकल आओ। अल्लाह की रहमत चाहते हो ना, तो हमें अल्लाह की रहमत मतलूब होती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, कुरान खानी करना नहीं बैठ जाते। ये हमें एक नुस्खा आता है, कुरान कहता है कायम करो नमाज को, जकात अदा करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, तब तुम्हारे ऊपर रहम करेगा अल्लाह। ये है रहमत का नुस्खा, इसके बगैर रहमत थोड़ी मिलती है। नमाज की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, जकात देने का हमें कोई फिक्र नहीं होती, इताअत है रसूल तो अपन पहले ही पूछ लेते हैं कि अगर रसूल की इताअत है तो कोई बात नहीं है, वो तो ना भी की तो मसले हल हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हम कुरान बस उस पे अमल कर लें, रसूल की इताअत की क्या जरूरत है। इताअत रसूल का जिक्र देखें बार बार इस सूरत में आ रहा है, बार बार। और हम इताअत रसूल क्या है, सुन्नत को फॉलो करना। हम अपने आप को सुन्नी सुन्नी कहलाने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं, लेकिन सुन्नत से हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं, सुन्नतों का पता ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कैसे करेंगे जब उन पर मालूम ही नहीं कि उन्होंने क्या फरमाया है, उनकी हदीस क्या है, बस नात पढ़ लेना, बस इश्के रसूल के दावे कर लेना, सुन्नी हो गया, और एक खास रंग की पगड़ी पहन लेना, सुन्नी हो गए। इस तरह करने से सुन्नतें सुन्नी नहीं हुआ जाता, जो सुन्नी अपने आप को कहे वो फिर देखे तो सही सुन्नत पूरी कितनी करता है, या नाम रख लेना काफी है। आप अपना नाम नमाजी रख ले और नमाज एक भी ना पढ़े तो नमाजी हो गए क्या आप नाम रखने से। ला तहसबन्नल्लज़ीना कफरू, ना समझे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, क्या मुआजिज़ीना फिल अर्ध, के वो आजिज कर देंगे हमें जमीन में, वाहुमुन्नार वलबिसल मसीर, उनका ठिकाना तो आग है, वो जो जिस जो बहुत बुरा ठिकाना है, बहुत बुरी रहने की जगह, लौटने की जगह, मसीर होता है लौटने की जगह। पहले बता दिया गया नबी अलैहिस्सलाम की बात को टॉप पे रखोगे ना तो रहम किए जाओगे, और ये ना समझे काफिर कि वो हरा देंगे अल्लाह को जमीन में, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से तसल्ली दी जा रही है। ये जो इतना बढ़ बढ़ के आगे आ रहे हैं, अपनी कुव्वतें अपनी ताकतें दिखा रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, क्या ये सोचते हैं ये अल्लाह को हरा सकते, क्योंकि ताकत का पलड़ा तो इस वक्त काफरों का भारी था ना। लोगों के दिल में ख्याल आ सकता था कि कैसे होगा ये, कभी हमें इक्तदार कैसे मिल सकता है, मुसलमानों की हालत तो देखो। तो यही दुनिया में खुशखबरी दे दी गई कि फिक्र ना करो, मुसलमानों को गलबा मिलेगा, एक दिन वो सुपर पावर बनेंगे, और ये ना समझें काफिर कि ये हमें हरा देंगे। अल्लाह ताला जमीन में इक्तदार मुसलमान को देगा। मुनाफिकीन को भी समझाया जा रहा है ना कि तुम भी जो काफिरों की शानो शौकत देख के और उनकी तरफ झुक जाते हो, उनकी तरफ मायल होते हो, तो काफिर अल्लाह को जमीन में हरा नहीं सकते। इसका मतलब है कि अगर काफिर आज पनप रहा है, काफिर आज आगे बढ़ रहा है, मुसलमान से आगे है, तो काफिर का कोई कारनामा नहीं है, क्योंकि हमारे जो है ना बेचारे लोग जो है, इनको एक बड़ी गलत फहमी हो जाती है। गलत फहमी ये होती है कि ये काफिर जो आज उरूज हासिल कर चुके हैं, तो शायद ये इसीलिए हासिल किया है क्योंकि ये कुफर पे है, और ये इस्लाम है ना, इसकी वजह से ही हम पीछे रह गए। इस्लाम हमें पता नहीं बैकवर्ड ही बनाता जाता है, हमें पीछे ही ले जाता जाता है। हमने तरक्की अगर करनी है ना तो हम इनके रास्ते पर चलेंगे तो हमें तरक्की मिलेगी। ये हमारा एक जहन में एक बात बैठ गई अक्सर मुसलमानों के, इसलिए ही वो इस्लाम को उतार के फेंक देना चाहते हैं। अगर जुबानों से बोलते नहीं है ना, लेकिन तरीका यही है कि इस्लाम को पीछे करो, इस्लाम क्या मेरे साथ चिमट गया, इसको उतार के फेंको, तब मैं तरक्कियां करूंगी, मैं मॉडर्न नजर आऊं, मैं इनकी तरह उठूं बैठूं, मैं इनकी तरह ही खाऊं पीऊं, मैं इन्हीं की तरह तौर तरीके अपनाऊं, मेरा रहन सहन इनकी तरह हो जाए, मेरी बोल चाल इनकी तरह हो जाए, मेरे सब मामलात इनके जैसे हो जाएंगे तो मैं भी तरक्की कर जाऊंगी। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी, क्योंकि काफिर तो अल्लाह को जमीन में हरा नहीं सकते, इनका तो ठिकाना जहन्नुम में आग है, बहुत बुरा ठिकाना है वो। इनके रास्ते पर चल के मंजिल वही होगी जो इनकी मंजिल, और वो आग है। कभी भी इस गलत फहमी में ना रहे, कभी भी, कि काफरों के तरीके पे मैं चलूंगी तो फिर पता नहीं मुझे तरक्कियां मिल जाएंगी, इनका ही तरीका सही होगा, देखो इन्होंने तरक्की की है ना इसी तरह तो हम भी इसी तरह तरक्की कर सकते। नहीं, उन्होंने तरक्की नहीं की, हमने पस्ती इख्तियार की है। समझ आई फर्क है? एक चीज है उन्होंने तरक्की कर ली, एक चीज है कि हम पीछे रहे तो वो आगे नजर आते हैं, हम नीचे हो गए, हम जलील हो गए तो वो ऊपर नजर आते हैं। अल्लाह हू अकबर। तो माइंडसेट अपना थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है हमें, ये बेसिक चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है। हमारा कुरान कुछ कह रहा है, हमारी सोच कुछ और है, कुरान हमें ये बता रहा है, हमें तो ये बातें नहीं समझ आती, हमारे तो दिमाग किसी और तरह सेट हुए हुए, हमें तो तरक्कियां किसी और चीज में नजर आती, इनके जैसे बनने में नजर आती, कुरान कुछ और कहता है, किसकी बात मानी जाए, हमारी अकल की या कुरान की? तो फिर ये जो अपनी अकल के बोर्ड पे जो लिखा हुआ ना, इसको इरेज करें, इसको मिटाएं और उसके ऊपर ये लिखें जो कुरान बता रहा है। माइंडसेट बदलने की जरूरत है। यहां तक है ये हिस्सा जो पीछे के साथ कनेक्टेड था, जिसमें साफ साफ हमें बता दिया गया, ये नूरे हिदायत की अगर हिफाजत करनी है ना तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, वरना नूरे हिदायत बुझ जाता है। तस्बीह भी करनी है, इताते रसूल भी करनी है, ईमान और साले अमल भी, नमाज का निजाम कायम करना है, जकात अदा करनी है, ठीक है, ये है तो फिर नूरे हिदायत जलता रहेगा, वरना मध्यम पड़ जाएगा, और मध्यम पढ़ते पढ़ते ये ना कोई एक दिन बुझ जाए। और हम तो क्या चाहते हैं, नूरो ना ला नूर, हमारे अंदर का भी नूर जागा हो, जिंदा हो, और उसके ऊपर कुरान का नूर मिल जाए तो हम नूरो ना ला नूर होके जगमगा उठे, हमारे दिल का शीशा भी साफ सुथरा हो, हमारा माहौल भी साफ सुथरा हो, तो हम अब इस रोशनी से सारे जहान को रोशन करते, हम ये चाहते हैं ना, तो उसके लिए इस पे अमल करना पड़ेगा। ठीक है, नूरे हिदायत को भी फ्यूल चाहिए, ये फ्यूल है, कोई और फ्यूल ना दे जो अपने जहन बनाए में, जैसे ये कुरान का फ्यूल दे इसको, तब वो और रोशन होगा। और इसके बाद से अब आयात वही माशरती जिंदगी वाली है। आपने, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि आपने देखा ये आयते नूर कैसे मिडल में रखी गई है, ऐसे लग रहा है एक नूर है जो जगमगा देगा घरों को भी, माशरे को भी, समाज को, हमारे आगे और पीछे समाजी जिंदगी से मुतालिक अहकामात है। तो अब क्या हमें हुक्म दिया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान का दावा करने वाले हो, मैं इसलिए ये कह रही हूँ ईमान का दावा करने वाले हो इसलिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू को कभी कभी हम कहते हैं ना ए ईमान वालों, तो कोई कह सकता है जी नहीं जी मैं तो ईमान वाली हूँ ही नहीं, ये है जो ईमान का दावा करने वाले, इसका मतलब हर उस शख्स के लिए है जिसने कलमा पढ़ा, ये उनके लिए नहीं है सिर्फ जो बहुत ऊंचे ईमान वाले वो सहाबा कराम ही हो तो उनके लिए, बाकी हमारा तो भाई इतना ईमान ही नहीं है, हम तो बड़े कमजोर से लोग हैं तो हमारे लिए तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी ईमान का दावा करता है, चाहे उसके अंदर ईमान है या नहीं है, चाहे वो मुनाफिक है, मुनाफिक भी कहते थे हम ईमान वाले, चाहे ईमान है या नहीं है, चाहे कम है या ज्यादा है, तो है ईमान का दावा करने वालों, सभी कर रहे हैं ना ईमान का दावा। तो अब तुम्हें कुछ करके दिखाना है, और वो क्या करके दिखाना है, लियस्तअज़िनकुमुल्लदीन मलकत अईमानुकुम। सबसे पहले ये बात कही गई कि ए ईमान का दावा करने वालों, अब क्या है कि चाहिए कि इजाजत मांगे कौन, अल्लदीन मलकत अईमानुकुम, वो जो तुम्हारे दाहिने हाथ के अंडर है, यानी तुम्हारे लौंडी गुलाम, और नंबर टू, ये नंबर वन लिख लें, नंबर टू वल्लदीन लम यबलुगुल हुलुमा मिनकुम, और वो लोग भी जो नहीं पहुंचे बुलूगत को तुम में से। कौन है वो लोग जो बुलूगत को नहीं पहुंचे, जो बच्चे हैं। देखें पिछले आयत 27 में अल्लाह ताला ने फरमा दिया था ना, आयते इस्तेजान थी कि अपने घरों के अलावा किसी भी घर में आप जाएं तो जब तक आप इजाजत ना ले लें वहां पे एंटर ना हो, ठीक है। और उसमें एक्सेप्शंस थी, गुलाम लौंडियां वो तो घरों में आते जाते रहते, नौकर चाकर आ रहे हैं जा रहे हैं इसका इस घर में कमरे के अंदर, या छोटे बच्चे हैं वो भी आते जाते रहते हैं, तो उन वो एक्सेप्शनल थे, बाकी सबको तो इजाजत लेनी है। अब यहां पर वो जो एक्सेप्शनल केसेस थे, यानी गुलाम लौंडियां और बच्चे, उनको भी कहा गया कि वो भी इजाजत लें, लेकिन कब, 3 मरात, 3 मर्तबा नहीं है यहाँ पे, 3 औकात में, मर्रात मर्रा वैसे कहते हैं 3 दफा। अब उसको भी हम देख लेते हैं अगर ये लफ्ज से लिया जाए, लेकिन ज्यादा इसका माना बनता है 3 औकात में, क्योंकि आगे औकात मेंशन किए गए हैं, 3 टाइमिंग्स में उनको भी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स की या बड़ों की या अपने मालकों की, अगर गुलाम लौंडियां हैं तो अपने मालकों की प्राइवेसी का ख्याल रखें। देखिए हमने इससे पहले इजाजत मांगने का क्या तरीका देखा था, ये कि 3 दफा या तो बेल करें, या फिर पहले जमाने में तो बेल नहीं होती थी तो सलाम कर लें, या अपना नाम लेकर इजाजत मांग लें कि भाई मैं फलां हूं तो मुझे इजाजत है अंदर आने की। तो इस तरह से करके इजाजत ली जाए। अगर 3 दफा पे इजाजत ना मिले तो फिर क्या करना है, दरवाजा खोल के अंदर चले जाना है। उस जमाने में तो लॉक भी नहीं होते थे, पर्दे लगे होते थे, या बाज जगह पे पहले तो पर्दे भी नहीं होते थे, तो वह वापस चले जाएं या अंदर चले जाएं, वापस चले जाएं, और क्या करें। फिर उसके बाद मुंह बना के बैठ जाएं कि हमें तो देखो जरा, घर में मुझे बातों की आवाज भी आ रही थी, गाड़ी भी खड़ी भी थी, पता है मुझे घर पे थे, जानबूझ के इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, अब तो हम जाएंगे ही नहीं इनके घर। नहीं, बुरा नहीं मानना, बिल्कुल बुरा नहीं मानता। हम तो आ गए, हमने बेलें भी की, आपने तो खोला ही नहीं दरवाजा, तो कोई नहीं, आप 3 दफा बेल करके वापस आ जाए। अब यहां पर जो इस आयत में है ना, वो आप पहले पढ़ चुके हैं ना, ये वाली बात है। अब इस आयत के अंदर उस तबके की बात हो रही है जिसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो नौकर है, वो घर के अंदर ही रहते हैं, घर में रहने वाले नौकर हैं, वो आते हैं जाते हैं, कभी सौदा लेने जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कमरों के अंदर भी, एक कमरे में जा रहे हैं दूसरे में जा रहे हैं, इधर सफाई कर रहे हैं, उधर से चीज उठा रहे हैं, उधर रख रहे हैं। तो इसी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी भागते फिरते हैं सारे घर में, तो वो भी कभी रात को उठ के चल पड़ते हैं पेरेंट्स के कमरे में, कभी किसी तरह। तो उनको भी कहा गया कि ये जो 2 तबके हैं जो आपके घर के अंदर रहने वाले हैं, ये बाहर से नहीं आ रही, अंदर रहने वाले, 3 औकात में ये भी कमरे में आने से पहले इजाजत तलब करें। वो 3 औकात कौन से हैं, मिन कबली सलात अल फज, वहीना तदाउना सियाबकुम मिन जहीरती व मिन बादी सलात अल ईशा। कबले सलात अल फजर, फजर से पहले, क्योंकि फजर पे तो सब उठ ही जाते हैं, और उस वक्त जब आप अपने कपड़े उतार देते हो दोपहर के वक्त, यानी जब गर्मी के टाइम होते थे, दोपहर को लोग कैलूला किया करते थे, तो दोपहर के टाइम जो सोने का वक्त होता है, जो कैलूला का वक्त होता है, इंसान उस वक्त ईजी हो जाता है, अपने जैसे औरत है तो अपने चलो भाई दुपट्टे वगैरह उतार के रख दिए, कभी पतली शर्ट पहन ली, गर्मियों के दिन होते हैं बिल्कुल सी थ्रू पहनी हुई है कमरे में, या मिन बादी सलात इशा, या ईशा के बाद है, नाइट सूट पहना हुआ है जो कि इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, या मर्द है तो उन्होंने कोई ऐसे कपड़े पहने हुए, तो इन तीन औकात में, या फिर ये भी है कि ये इंटिमेसी के भी औकात होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, तो इस वक्त में जो भी कमरे में आएगा वो इजाजत लेकर आएगा। जैसे एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मेरी छोटी दो बहनें हैं, वो छोटी हैं, मेरे ही अंडर हैं, वो जेरे परवरिश है, उनके कमरे में क्या मैं इजाजत लेकर जाऊं? तो फरमाया हाँ इजाजत लेकर जाऊं। फिर पूछा कि मैं इजाजत लेके जाऊं वो उनके कमरे में, वो तो मेरे अंडर ही है, छोटी बहने हैं। नहीं, फरमाया इजाजत लेके जाओ। तो इसका मतलब है कि चाहे आप अपने बेटे या बेटी के कमरे में भी जा रहे हैं, बाप बेटी के कमरे में जा रहा है, माँ बेटे के कमरे में जा रही है, तब भी नॉक कर ले। इसी तरह हम बच्चों को भी सिखाएंगे ना, हाँ दरवाजे खुले में वो एक अलग बात है, लेकिन दरवाजा बंद है तो नॉक कर ले और फिर जाए, उससे क्या होगा कि वो बच्चा भी सीखेगा इसी तरह। तो सारे घर को ये मैनर सिखाने की जरूरत है। अब अगर इनको सोचें, ये जो छोटे बच्चे हैं अभी बालिग भी नहीं हुए, उनको भी ये मैनर सिखाए जा रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है? वो लोग जिनको हमेशा ही इजाजत लेनी चाहिए, उनको क्या इस तरह से करना चाहिए कि देवर जेठ हैं या नंदोई हैं तो भावज के कमरे के अंदर वे जिद नराते भी आ रहे हैं। बाज जगह पे ऐसे होता है कि किसी कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम होता है, और जी किसी ने हाथ धोने हैं तो वो ड्राइंग रूम से उठ के आते हैं और वो दरवाजा खोला और सीधे चले जा रहे हैं। अब वो बेचारी घबरा के उठ के बैठ रही है, दुपट्टा ठीक कर रही है। इसी तरह बाज घरों में गेट हमेशा ही खुले रहते हैं, तो जो आने वाले हैं समझते हैं पता नहीं गेट हमारे लिए खोला है, तो वो दंदनाते हुए अंदर चले जाते हैं। अंदर चले जाते हैं, वैसे भी रिश्तेदार हैं तो हमें कौन कुछ कह सकता है, बहन का घर है, भाई का घर है या इस तरह से। तो अब वो अंदर चले आ रहे हैं, चाहे दोपहर का वक्त है चाहे कोई भी वक्त है, बेडरूम में चले गए। चाहे आप औरत हैं और आपकी बहन ही क्यों ना हो या कोई, अब खातूने खाना बेचारी जल्दी से उठती है, वो अपना दुपट्टा समेटती है, सलाम करती है, आ जाए आ जाए। अगर उसने ये कह दिया ना कि आप बता तो देते हैं आने से पहले, तो कभी दोबारा उसके घर भी नहीं जाएंगे। पिछले दिनों ही मुझे किसी ने कहा कि वो पाकिस्तान से आई हुई, तो उन्होंने कहा भी यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे तो बड़ी फॉर्मेलिटी होती है कि जिसके भी घर जाओ ना बता के जाओ। अब ये देखें, ये तो मैनर्स इस्लाम की हैं, ये कोई वेस्ट के थोड़ी मैनर्स हैं, इस्लाम ने ये सिखाए। लेकिन उनको ये था कि हमारे मुल्क में देखिए कितना अच्छा है ना, जिसके घर मर्जी बस दौड़ते चले जाओ, अंदर घुसते चले जाओ किसी के घर में, कोई किसी की प्राइवेसी का ख्याल नहीं है, कोई किसी का वो नहीं है कि कोई किसी के आराम का वक्त है, काम का वक्त है, किस वक्त है, हमने बस पहुंच जाना है, ना बताना है ना कुछ है, और फिर बैठना ऐसे है ना, ये देखना हो सकता है दूसरे ने कहीं जाना हो। बाज दफा ऐसा होता है किसी ने किसी दावत पे जाना है, वो कहीं इनवाइटेड है और बेल बजी और कोई आके बैठ गए मेहमान। अब इंसान ना उनको कह सकता है कि भाई हमने तो जाना है, अब क्या करें, अब वो बैठे में ना उठ के जा रहे हैं ना वो इजाजत लेकर आए, और वो ये भी चाहते हैं कि आप उनको एंटरटेन भी करें। अगर कह दिया कि हमने कहीं जाना है, हमें हम जल्दी में है, तो फिर भी बुरा मानेंगे। तो ये देखिए ना कैसे हमने अपने मैनर्स बना लिए। तो इजाजत लेने का तो कोई आज के दौर के अंदर हमारे मुल्कों में तो कोई तसव्वुर ही नहीं है कि किसी से इजाजत ली जाए, वैसे सबके पास फोन होते हैं। आज तो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही आसान है ना इजाजत लेना, आपको जरूरत ही नहीं किसी के घर के दरवाजे पे खड़े होकर उसका दरवाजा तोड़ते रहने की, जबकि आपके पास फोन है, हर हर बंदे के पास फोन है, लेकिन इजाजत लेना वो तो हमें गवारा नहीं। इवन मैंने किसी को बताया भी होता था ना कि मैं आपके घर आ रही हूं या आप अवेलेबल होंगे, उनसे इजाजत ली, फिर भी घर से निकलने से पहले भी मैं बता देती थी कि हम अब निकल रहे हैं या हम अब 10 मिनट दूर हैं या हमारा ये ईटीए है, ताकि दूसरे को ये पता हो कि इस वक्त इन्होंने आना, वो आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये ना हो कि वो हड़बड़ाते हुए उठें और उनको हो कि भाई पता नहीं क्या बेचारे दुपट्टे अपने सही करें या कुछ करें, तो ये सही नहीं होता तरीका। अब यहाँ पे हमें छोटे बच्चों तक का भी जब ये मैनर्स बताई गई, तो जिन घरों के अंदर जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं वहां पे तो बिल्कुल ही नहीं कोई तसव्वुर। अब बालिग लड़के हो चुके हैं लेकिन चच्ची के मुमानी के कमरे के अंदर ऐसे आते जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई मसला नहीं। तो क्या हुआ, इसमें क्या बात है? नहीं, यहाँ पे देखिए बड़े भाई तक को कहा गया कि छोटी बहनों के, वो तो महरम है ना, इसमें महरम ना महरम की बात नहीं आ रही कि कौन है महरम कौन है ना महरम। जो ना महरम जो है वो नौकर है, और जो महरम है वो वैसे ही आ गए। इवन यहाँ तक कि शौहरों के लिए भी, जैसे मैंने आपको पहले बात बताई थी कि वो सहाबिया बताती हैं कि वो उनके शौहर जब घर आते थे तो खनकारते थे, जिससे उनको पता चल जाता था कि आ गए। यहाँ आप घर में एंटर हुए, आदमी अपने घर में ही आया है तो ऊंची आवाज में सलाम कर देगा तो घर वालों को भी पता चल जाएगा कि आ गए। तो वो ये नहीं खड़ा होकर इजाजत लेगा मैं आ जाऊं, अपने घर में ही आ रहा है, उसको इजाजत की जरूरत नहीं। मगर ये एक तरीका है उनको मानूस करने का। इसीलिए मैंने आपको कहा था ना कि एक इजाजत लेना होता है, एक मानूस कर देना होता है। तो मानूस करना तो जरूरी है हर एक के लिए। बाज ने मानूस इस तरह से करना है कि इजाजत भी लेनी है, अपना नाम भी बताना है। बाज को नाम बताने की जरूरत नहीं, वो घर वाले ही है, उन्हीं का घर है, तो इस तरह से वो मानूस कर देते हैं। तो ये इस्लामिक मैनर्स हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। अच्छा फिर यहाँ पे है एक तो ये कि कपड़े उतार देना। कपड़े उतारने का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल नंगे पड़े हैं, मतलब ये है कि जैसे उतार दिया, दुपट्टा उतार दिया औरत ने, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई नाइट सूट पहन लिया, जो छोटा भी हो सकता है बारीक भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर चाहे महरम है चाहे ना महरम है, उस प्राइवेसी का वो ख्याल रखे, सिवाय शौहर के जाहिर है, लेकिन अदरवाइज वो प्राइवेसी का ख्याल रखे। बाप भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी बेटी को इस तरह से कहीं देखे। वो उसमें नॉक कर लेना और फिर अंदर से कोई कह दे कि कम इन, आ जाए, तो आप जरूर चले जाएं। लेकिन हमारी इजाजतें कैसी होती हैं, इजाजत लेने का हमारा तरीका देखें। नॉक किया और साथ ही दरवाजा खोल के अंदर भी मुंह डाल दिया, भाई इससे क्या फायदा होगा, फिर इजाजत लेने का क्या सवाल रहा। देखते नहीं आप इस तरह करते, नॉक हुई और अभी किसी ने अंदर से जवाब ही नहीं दिया और सर अंदर दे दिया आपने दरवाजे में, और फिर बात करना शुरू हो गया कि कोई आया है या कोई गया है। नौकर मुलाजमीन ज्यादातर ऐसे भी करते हैं, या बच्चे भी। तो बच्चे भी अगर मसलन रात को, कभी कभी बच्चों को आदत होती है अपने कमरे से उठ के, डर गए हैं या कुछ है, अपने कमरे से उठ के आ रहे हैं तो वो नौक करते हैं। तो ये हमें सिखाना होगा, ये नहीं कि उठ के वैसे ही चले आए और बिस्तर में घुस जाए। तो सलासो औरात लकुम, तीन औकात हैं तुम्हारे लिए, तीन ये औकात हैं जो पर्दे के औकात हैं। ये तीन औकात में किसी विजिटर को भी आने से पहले इजाजत लेने की जरूरत है। रिवायत में आता है कि उमर रजी अल्लाह तआला एक दफा सोए हुए थे कि दोपहर का वक्त था, तो उन किसी कोई आया उनके पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही किसी को भेजा था, तो जाने वाले ने दरवाजा खोला और वो ये उठे और बैठ गए। जाहिर है जब इंसान सोया होता है वो किस तरह से सोया हुआ है, क्या हालत है उसकी, क्या क्या है, तो उस वक्त उन्होंने फरमाया हज़रत उमर ने कि काश अल्लाह ताला हमारे बापों को और बेटों को और मतलब ऐसी घड़ियों में हमारे पास दाखिल होने से रोक दे। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे तो ये आयत उतरी कि चाहे वो लौंडी गुलाम ही क्यों ना हो, नाबालिग बच्चे ही क्यों ना हो, इजाजत लेना जरूरी है। तो अब आप जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बेशक ये उनका घर है, लेकिन वो इस आयत के ऊपर गौर करें कि वो तो एडल्ट्स हैं, ये बच्चों के लिए ये हुक्म है और नौकरों के लिए, लेकिन वो तो एडल्ट्स हैं तो उनको कितना केयरफुल होना चाहिए। फरमाया लैसा अलैकुम, नहीं है तुम पर, वला अलैहिम जुनाहुन, और ना उन पर कोई हरज है, बादहुन इसके बाद, यानी इन तीन टाइमिंग्स के अलावा ना उनके ऊपर कोई हरज है आपके पास आना जाना, क्योंकि तवाफून अलैकुम बादुकुम अलाबाद, क्योंकि आते जाते रहते हैं तुम्हें से बाज बाज पे। आप देख लेना कि कभी बच्चे भागे आ रहे हैं, कभी नौकर चाकरों ने कोई चीज लेनी है, पूछना है, जाना है, आना है, सफाइयां करनी है, तो दरवाजे खुले ही होते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई उसके अंदर हरज नहीं। मगर ये तीन औकात सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं कि बुरा मानने की बात है या ये तो बहुत ही फॉर्मल हो जाना है या ये है, नहीं, बाज दफा बच्चे वालदैन को ऐसी हालत में देख लेते हैं कि फिर उसके बाद वालदैन शर्मिंदा होते हैं कि हम क्या करें। ये सबकी बेहतरी के लिए ऐसे है, काम आते हैं जो हम सबके लिए, इसमें भलाई है। और ये किसी और के बच्चों की नहीं बात हो रही, अपने बच्चों की बात हो रही। सोचे जरा, अपने बच्चों के साथ भी ऐसे होना चाहिए। तो हमें इन बातों को, अगर आप किसी संडे स्कूल में टीच करते हैं या किसी भी स्कूल में टीच करते हैं, तो बच्चों को भी आप सिखाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं, दूसरे बच्चों को भी ये बातें सिखाएं, ताकि ये चीजें आम हों, क्योंकि ये चीजें हम छोड़ चुके हैं। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इस तरह अल्लाह ताला बयान करता है, खोल खोल के बयान करता है तुम्हारे लिए आयात। अल्लाह वो अलीमुल हकीम, अल्लाह ताला वो पता है कि तुम्हें ज्यादा पता है। अलीम अल्लाह है कि नाउज़ुबिल्ला के तुम अलीम हो, तुम्हें ज्यादा पता है। अल्लाह इल्म वाला है, हिकमत वाला है, और उसने ये अहकामात दिए हैं। वाइदा बलग अल अतफालु मिनकुमुल हुलुमा, और जब बालिग हो जाएं बच्चे, तुम्हारे बलुगत की उम्र को पहुंच जाएं तुम्हारे बच्चे, फल यस्तअदिनु कम अस्तअदनल्लदीन मिन क़ब्लिहिम, तो फिर वो इजाजत तलब करें वैसे ही जैसे इजाजत तलब करते हैं उनसे पहले, जो उनसे पहले हैं, यानी जो उनके बड़े हैं, वो जैसे इजाजत तलब करते हैं फिर ये भी वैसे ही इजाजत तलब करें। क्या मतलब कि यानी जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर अब उनको भी हर वक्त में, पहले तो ये था ना, छोटे उनको तो सिर्फ 3 औकात में इजाजत तलब करनी है, लेकिन फिर ये जैसे 3 औकात के अलावा भी इजाजत लेंगे, ठीक है, सारे औकात में इजाजत लेंगे, माँ बाप के कमरे में आने से पहले वो नॉक कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अनलेस के खुला ही हुआ है कमरा, तो तब भी ऐसे थोड़ा नॉक करने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये तो हालत हमारी, तो हालात ये हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बाथरूम में घुसे आ रहे हैं, माँ शावर कर रही है तो दरवाजा भी खोला हुआ है, वो फोन पकड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं फलां आंटी आ गई हैं, ये निकले आप आ रहे, मुझे ये चाहिए, तो प्राइवेसी तो कहीं रह ही नहीं गई ना। और ये तो कितनी इस्लाम ने सोचे प्राइवेसी का ख्याल किया है, कि ये सारे जो इस्तेजान के बारे में ये जितनी भी आयात है, ये सारी आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है। और इमेजिन करें कि अगर इंसान की प्राइवेसी ही ना रहे, और या तो वो खुद अपनी प्राइवेसी को सबके सामने जाहिर करे कि अपने बेडरूम में ही कैमरे लगा लिए हैं, जिससे जी सब ट्रांसमिशन हो रही है फेसबुक पे या जो जिन जगहों पे भी, या वहां पे तस्वीरें लगाई जा रही हैं अपनी लेटे बैठे उल्टी सीधी हरकतें करते हुए, चाहे हस्बैंड के साथ ही, तो क्या प्राइवेसी है? इतना हद तक इस्लाम ने रिस्पेक्ट दी है प्राइवेसी को किसी की, और हम अपने पर्दे खुद ही चाक करते हैं, खुद ही फाड़ के लोगों के सामने आते हैं। इसी तरह एक और भी बात है, देखिए अगर इतनी प्राइवेसी है, तो अगर आप किसी घराने की बहू है ना, तो अब आप उनके घर में तो दाखिल हो गए, उनका घर का पहले पर्दा था दुनिया के आगे, लेकिन आप जब किसी की बहू बन गई हैं, तो अब आपका काम है कि उस खानदान की प्राइवेसी का एहतर करें। ये नहीं है कि उनकी हर बात आपने पूरी जगह पर ढिंढोरा पीटा हुआ, खास तौर पे अपने मैके में और अपनी दोस्तों में हर जगह बताया हुआ, जी फलाने का ये, उसका फलां, वो ये करती है, वो फलां वो करता है, वो ऐसे है, वो बना वैसे, लेकिन कितनी गलत बात है ना। अल्लाह ताला ने तो इतने तक अहकामात की, इतनी यानी सेंसिटिव ये बात है कि कुरान में ये अहकामात बता दिए। आप देख लें नमाज का तरीका कुरान में नहीं है, ऐसे रुकू करो, ऐसे सज्दा करो, ऐसे क़याम करो, और फिर तुम ये पढ़ो उसके अंदर, फिर ये पढ़ो, फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दी। ये भी बातें सिखाई जा सकती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते, लेकिन ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें होंगी कि कुरान में इनको मेंशन कर दिया गया, स्टिल हमारे लिए कोई बात ही नहीं, किसी की प्राइवेसी हमें कुछ उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, प्राइवेसी को हम समझते ही कुछ नहीं है, और अपना हक समझते हैं कि किसी किसी की बातें पता चल जाए हम बाहर चले जाके उसको घुमाएं इधर उधर। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी के घर के अंदर जाओ तो अंधे बन जाओ, यानी कोई उसकी चीजों की टो में ना इधर उधर देखोगे, क्या है उधर, क्या है ये, और जब उसके घर से बाहर निकलो तो गूंगे बन जाओ, यानी अब उसके घर की बातें आपने बाहर जाके नहीं करनी, ठीक है? तो अब आप अगर बहू हैं उस घर की, तो इस घर की प्राइवेसी रखना अब आपकी भी जिम्मेदारी है, या आपकी भी इज्जत है। अब उनकी बातों को मत उछालें बाहर, उनके ऐब ना बयान करें, उनकी बुराइयां ना आगे जाके बयान करें, ये तो खानदान ऐसा, ये लोग तो ऐसे, हमारे घर में तो ये होता था, इनके तो घरों में तो फलां चीज होती है, ये कोई कारनामा नहीं है आपका। ये तो ये आपको अल्लाह का हुक्म है दूसरों की प्राइवेसी रखने का। इसी तरह नौकर चाकर जहां पे काम करते हैं उनको भी नहीं चाहिए कि बाहर जाके घर की बातें बताएं, प्राइवेसी का ख्याल उनको भी रखना है। इसी तरह बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि आपके घर की एक प्राइवेसी है, अपने घर की बातें बाहर नहीं बतानी, ये उनको ध्यान होना चाहिए। देखिए कितना इस चीज का ख्याल रखा गया कि बंद दरवाजों के पीछे जो बात है वो उस किसी पे जाहिर ना हो, और हम खुद या तो दरवाजे खोलते हैं नहीं तो बच्चे बाहर जाके बताते हैं, उनको भी सिखाने की जरूरत है, जाहिर है उनको तो नहीं पता, इतनी समझ नहीं होती, नहीं तो हम जिस खानदान की बहू हैं तो फिर हमारा तो बस महबूब मशगला ही है कि हम इनकी बातें बाहर करें, क्या हम अपने मैके की बातें इस तरह से करेंगे? नहीं करते, तो फिर ससुराल की क्यों करते हैं? ये तो ऐसे ही है कि किसी ने एक खिड़की खोल दी जिससे दुनिया जहान उनके घर में झांक सकती है, और वो खिड़की उन बहू है जिस जो जरिया बनती है। तो अल्लाह ताला ने देखिए सुभान अल्लाह किस तरह से हमें सारी बातें सिखाई, और किस तरह से हमारे लिए कितना प्रोटेक्ट किया है हमें, कितना हमारी इज्जत की हिफाजत की है। क्योंकि ये बातें भला आप खुद बताइए, कौन चाहता होगा कि ये मेरी बातें बाहर निकलें, ये मेरी बातें सबको पता चले, ये मेरी बातों के इश्तेहार लगे, कोई भी नहीं चाहता ना। तो ये राइट आपको आपके रब ने दे दिया कि आप अपनी पर्दे रख सके, अपने घर के पर्दे उनकी प्राइवेसी, और दूसरों को मना कर दिया। इसीलिए तो कहा गया ना आपने झांकना भी नहीं किसी के घर में, यानी आप किसी के घर के दरवाजे के सामने ऐसे ना खड़े हो, या उसके घर के अंदर मसलन है उसका शीशे का दरवाजा है तो उसके साथ ना चिपक जाओ, जरा अंदर देखो ना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नहीं, वो शीशा लगाने का मतलब ये नहीं कि अब आप अंदर झांक रहे तो चिपक जाते हैं उसके साथ, या उसके दरवाजे के साथ कोई खिड़की है तो उसके साथ चिपक गए, देख रहे हैं अंदर कोई है कि नहीं है, तो फिर आपने इजाजत किस बात की ली? बल्कि उल्टा ये कहा गया दरवाजे से भी हट के खड़े हो, क्योंकि दरवाजा खुलेगा तो बाज जगहों पे आपने देखा ना सामने सेहन होते हैं, उस पे सेहन पे कोई कोई लड़की बैठी हुई है, कोई चारपाई पे है, कोई कोई औरत बैठी हुई है, उसने बाल खोले हैं, आप दरवाजा खोला तो सामने जो भी खड़ा हुआ है उसको अंदर तक नजर आएगा, तो इसलिए सामने ना खड़े हो, साइड पे हो कि आपकी नजर उनके घर के अंदर ना जाए। कितनी हद तक छोटे छोटे इश्यूज को भी एड्रेस किया गया। कैतालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इस तरह अल्लाह ताला बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयात को। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला है। क्यों बार बार कहा जा रहा है अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला है? क्योंकि हम फौरन कहने लगते हैं ना हमें ज्यादा पता है, मुझे पता है क्या करना, तो आपको नहीं ज्यादा पता है, अल्लाह ताला को पता है। तो इसलिए हम बाज आ जाएं अपने घर के पर्दे खोलने से कि हम फेसबुक पे और पूरी दुनिया के सामने, कोई तो आके किसी का घर देखता होगा ना, अब तो हाल ये है कि हमने खुद ही सोशल मीडिया पे डालकर अपने घर को सारी दुनिया में एक इश्तेहार बना दिया।